इनायतुल्ला भट्टी वल्द करमदीन भट्टी, करमदीन भट्टी वल्द पीर बख्श भट्टी,
बूढ़ा बीबी
बूढ़ा बीबी जोजा करीम दीन भट्टी, करमदीन भट्टी। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिही आलिल्लाह ला सीमा बक़ियतुल्लाह व लअनतुल्लाहि अला आदाहिम आदिल्लाह मिन यौमिन हाज़ा इला लिक़ाइल्लाह أما بعد فقد قال الله في كتاب حكيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسكوا رزقا بل لجوا في عتو ونفور درود پڑھ دیں اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزانہ گرامی یہ سورہ ملک کی تیسری اور آخری مجلس ہے اور یہ انشاءاللہ 21 سے لے کے 30 آیات تک پڑھی جائے گی اس میں انشاءاللہ اور انشاءاللہ اسی پہ آج کی مجلس پہ سورہ ملک کو ختم کریں گے انشاءاللہ اور اگلی بار سے انشاءاللہ سورہ یاسین شروع کی جائے گی الہی آمین تو جو میں نے پہلے جو 21 آیت کی جو تلاوت کری ہے اس کا ترجمہ یہ ہے امن حاذا الذی امن حاذا الذی یرزقکم ان ان افسکا رزقا بل لجو فی اتوی و نفور کون ہے جو کہ تم کو رزق دے دے جبکہ وہ اس کو روک لے جبکہ خدا اس کو روک لے بل لجو فی اتوی و نفور بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت میں مبتلا ہیں خدا بند عالم رزق دیتا ہے کھلاتا ہے پلاتا ہے اور یہ لوگ کھاتے اس کا ہے لیکن اسی سے سرکشی و نفرت کرتے ہیں اللہ اکبر کھاتے اس کا ہے لیکن اسی سے سرکشی و نفرت کرتے ہیں رزق ہر چیز ہے رزق کھانا پینا رزق ہے قرآن حکیم رزق ہے یہ بھی رزق ہے نا پڑھتے قرآن اس کا ہے لیکن اس کے ولیوں سے ہی نفرت کرتے ہیں یہ بھی تو نفرت یہ بھی تو سرکشی ہے پڑھ خدا کا قرآن رہا ہے پڑھ خدا کا قرآن رہا ہے لیکن خدا کے بھیجے کی سے سرکشی نفرت کر رہا ہے رزق ہر چیز رزق ہے نا کھانا پینا علم ہر چیز رزق ہے قرآن میں ہے کہ یہ لوگ خدا کا رزق اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہوں آپ دیکھیں اسے کبھی کافر کو کھانا کھاتے دیکھا آپ نے کبھی برگر کھاتے دیکھا آپ نے اس کو ایسا کھاتا ہے جیسے حیوان کھاتا ہے ایک مومن کو کھانا کھاتے دیکھا بسم اللہ الرحمن کر کے بیٹھتا ہے اس کے چہرے سے نور ظاہر ہو جاتا ہے خدا کی معرفت اس کو سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے ایک مومن جب رزق کھاتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ عبادت میں عبادت کر رہا ہے کھانا کھانا بڑی عبادت ہے خدا بند عالم کی بڑی عبادت ہے بسم اللہ آرام کرے جب بندہ کھانا کھانے پڑتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں اس کے پاس اور جب شکر کرتا ہے تو فرشتے خوش ہوتے ہیں ایک درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد افمن یمشی مکبا علی وجہی اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم اس کے بعد کیا آیا تھا بھلا جو شخص منہ کے بل چل رہا ہے وہ ہدایت پہ یا وہ جو سیدھا کھڑا ہو کے سیدھی راہ پر چل رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو لوگوں کو بات کہی ایک وہ کافر جو کہ منہ کے بل زمین پہ چلتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ دین کے رستے پہ چلنا کیسے تو وہ اس طرح چلتا ہے جیسے کوئی منہ کے بل چل رہا ہو اب آپ سوچ لیں منہ کے بل انسان کیسے چلتا ہے چل ہی نہیں سکتا ٹیڑھا آڑا چلے گا گر جائے گا ہر وقت پریشان और गुनाहों में मुबतला और अंधेरे में, मुनाफिक की यही तो मिसाल है। जो सीधे रास्ते पर चलता है सीधा चलता है, उसको आसानी रहती है, उसको आसानी रहती है चलने में, एक सीधा खड़ा होकर जो चलेगा सीधे राह पे वो आसानी से चलेगा। मोमिन की जिंदगी को अल्लाह ने आसान बनाया है दुनिया में। आप मोमिन को देखें, भले ही जाहिराना कितनी मुश्किल देखेंगे, जो हमेशा इत्मीनान से चलेगा, एहले बैत को मानोगे शरीयत आसान हो जाएगी, मुश्किलों में पर्दा नहीं फिरोगे। अगर एहले बैत को छोड़ा तो शरीयत इतनी मुश्किल हो जाएगी कि तीन तलाक में शादी गायब, दुरूद पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एहले बैत पे चले आप, इसके अंदर दोनों बातें हैं। सीधे रास्ते पे वो है जिसने कुरान हकीम में कबूल करा, सीधे रास्ते पे वो जिसने के आले मोहम्मद की विलायत को कबूल करा, वरना मुश्किलें आ जाती हैं। एक दुरूद पढ़ते हैं, कुल हो लजी अंशाकुम वजअलनाकुम समा अफसार अफ़ीदा अलीलम मा तशकरून। अल्लाह अकबर। यह आयत आगे चली, कहो कि वो कौन है, कुल हो लजी, कहो कि वो जिसने कहा तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, अलीलम माता शुक्रून, लेकिन तुम कम ही शुक्र करते हो। यह शुक्र जब शुरू होता है, जब चीजें चले जाती इंसान के पास, जब दुआओं का सिलसिला शुरू हो जाता, हार्ट अटैक आ गया, इसमें अल्लाह ने कहा जिसने दिल बनाया, हार्ट अटैक आ गया, अल्लाह याद आना शुरू हो गया। जब तक हार्ट अटैक नहीं आया, खुदा गायब, यही तो मुसीबत है हमारी। कान में खराबी आ गई, आंख में खराबी आ गई, परेशान है। जब तक है, जब तक खुदा, वो भूले हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू ने ही कहा ना, कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअलकुम समअ अबसार अफ़ीदा, मैंने बनाया ये सब चीजें, अलीलम मा तशकुरून। आजकल बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सोच लिया हम कार्डियोलॉजिस्ट बन गए तो दीन से खारिज हो जाए हम, क्यों, हम बहुत बड़े आदमी हैं। ये मुसीबत है ना दुनिया की, ज़कात नहीं देंगे, खुब नहीं देंगे, मस्जिद नहीं आएंगे, क्या भाई हम बड़े डॉक्टर हैं। अरे अल्लाह ताला ने खुद ने दिल बनाया भाई, खुदा को तो मानो, दुरूद पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इस आयत की जो तफसीर है ना, कहो कि वो जिसने के तुमको बनाया, कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम, जो अंश है वो है जिसने तुमको बनाया, कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम, कहो कि वो जिसने तुम्हें बनाया, पहले अंशअकुम, फिर क्या जाना लकुम समय अफसर आफिदा, तो दो चीजें हैं इसमें, दो हिस्से। पहले उसने कहा कि मैंने तुम्हें बनाया है, फिर क्या कहा कि मैंने तुम्हें अंशाकुम वह जाना लकुम समय अफसर, फिर कहा फिर तीन चीजें बताई, मैंने तुम्हारा कान बनाया, मैंने समाज बनाई, मैंने तुम्हारे आंखें बनाई और तुम्हारा दिल बनाया। कलीलम मा तशकुरून, लेकिन तुम थोड़ा ही शुक्र करते हो, कलीलम थोड़ा सा शुक्र करते हो बस। तुम शुक्र करने वाला कौन था, शुक्र करने वाला मेरा मौला इमाम हुसैन था, जिसने के दुआ अरफात में शुक्र अदा किया है। मौला ने शुक्र अदा करा है आजाओं को बनाने का। इसका तर्जुमा मैंने थोड़ा मफाती में उर्दू में देखा, उर्दू बड़ी गाड़ी दिखी मुझे। आजकल गाड़ी उर्दू का जमाना नहीं है, सही बात तो है ना, अगर गाड़ी उर्दू पढ़ने बैठ गया तो 90% को समझ में नहीं आएगा। आजकल जमाना है इंग्लिश का, तो मैं इंग्लिश में थोड़ा सा तर्जुमा पढ़ देता हूँ, दुरूद पढ़ दे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुदा बंदे की तारीफ कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, हवाला देखे, द लाइन्स इम्प्रिंटेड ऑन माई फोरहेड, उसका जिक्र कर रहे हैं, मेरे पेहरे पे जो ये जो इम्प्रिंट है ऑन माई फोरहेड, द ओपन हालो ट्रैक फॉर द ब्रीथ ऑफ माई ऑफ लाइफ, द सपल बट स्ट्रांग नेजल कैविटीज ऑफ द नोज, अलीलम मा तशकुरून, ये ग्रुप है, ये इमाम है जो कि शुक्र अदा कर रहे हैं खुदावंद आलम का, द वाइब्रेशन ऑफ ईयर ड्रम्स फॉर द हियरिंग एंड दैट विच दाउ जॉइन एंड फिट देयर विथ, टू एक्टिव लिप्स, निम्बल मूवमेंट ऑफ द टंग अटरिंग वर्ड्स, ए सीट एंड अ पैलेट इनसाइड द माउथ एंड जॉस, ग्रोथ ऑफ द टीथ, द पैसेज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, carrier laden with nerves and sinews inside of the skull, tube for swallowing, held fast by the connective tissue of the back, support and surrounds the clock of the chest, holding the great artery and the vital veins, the pericardium of the heart, fissures and retinues of the liver, the encephalic rib cage on both sides. ये इमाम का जिक्र है अल्लाह सुब्हान व तआला का. इसको कहते हैं शुक्र अदा करना अल्लाह का. अल्लाह सुब्हान व तआला ने तीन अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र करने का शरफ अइमा ताहिरीन को है. इस तरीके से उन्होंने खुदा के बनाए हुए आज़ा का जिक्र करा दूध पड़ रहे हैं. वही है जिसने तुमको जमीन के ऊपर पैदा करा और उसी की तरफ तुम होके जमा होके जाओगे. ये जमीन से हमको मोहब्बत होना चाहिए, इसलिए अबू तराब से मोहब्बत करें आप, बूतराबी हो जाए आप. ये जमीन से जो मोहब्बत बेहद जरूरी है. खुदा बंदे आलम ने जमीन का हमेशा वास्ता दिया कि वो जिसने के कहो कि वो जिसने तुम्हें जमीन के ऊपर पैदा करा और उसी की तरफ तुम जमा होके जाओगे. हमको मिट्टी से अल्लाह ने बनाया और इसीलिए हम मिट्टी पे सजदा भी करते हैं. लोग कहते हैं तुम सजदे का लेके घूमते क्यों फिरते हो. उनको समझ में नहीं आता कि मिट्टी से जितना इश्क होगा उतनी रूहानियत में बरकत आएगी, क्योंकि इस खाकी जमीन को खाक में जाना है. खाकी बदन को खाकी जमीन की आदत हो जाना चाहिए. एक मोमिन वो है कि जो जमीन को देखे तो कहे मैं तुझमें जरूर आने वाला हूं और अपने आप को रूहानी तौर पर कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दे कि मुझे इसमें दफन होना है. इसलिए सजदगा बेहद जरूरी है. आप सजदगा कर सकते हैं हर चीज पे जो अलाउड है, लेकिन जो जमीन की जो बरकत है वो अलग है, क्योंकि उसकी फजीलत सबसे आला है. कुरान की आयत तो जाहिर है, ज़रकुम फिल अर्ज़ वो इलैही तुहशरून. इस अर्ज की इज्जत इंसान करे और हमेशा चुपके चुपके गुफ्तगू करे कि मुझे उसकी आगे आया चलती भाई अकूल मताओ आजल बादू इन कुंतुम सादिकी. और पूछते हैं कि जो तुमने वादा करा है वो कब आने वाला है अगर तुम सच्चे हो तो. कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन. कह दो कि इसका इल्म खुदा के पास है और मैं तो सिर्फ खुला डराने वाला हूं. नज़ीरुम मुबीन. हमारा मसला क्या है कि हम रसूल को सिर्फ हमेशा रहमतुल आलमीन समझते हैं. हमारे मसले अरे है रहमतुल आलमीन, लेकिन यहां क्या कहा है इनने माना नजर मैं खुला डराने वाला हूं. रसूल अल्लाह को एक पैकेज में नहीं रखते आप. इनने माना नजर मुबीन मैं खुला डराने वाला हूं. रसूल अकरम खुले डराने वाले थे. जाने के पहले उन्होंने मक्का में जमा करा बनी हाशिम को और कहा बनी हाशिम मैंने अपना पैगाम दे दिया है, कयामत के दिन तुम गवाह रहना, मैंने अपना पैगाम दे दिया, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ, मेरे अमल मेरे साथ. इन्नमा आना नज़ीर मुबीन. ये रसूल अकरम है नज़ीर मुबीन. हमने सिर्फ एक ही बात कह दी रहमतुल्लाह अलैह. अरे रहमत में ये नज़ीर भी है, ये रहमतुल्लाह में नज़ीर भी है. उन्होंने डराया, ये उनकी रहमत है. डरा के चले गए, रहमत है जाके खुदा जब्बा के सामने जाए तो तैयार हो गए जाए, ये उनकी रहमत है. दुरूद पढ़ दे. और वह कहते हैं कि तुम सच्चे हो तो वादा कब आने वाला भाई. वो यकूल मता वादा इन कुन तुम सादिकीन. अगर तुम सच्चे तो बता ये वादा कब आने वाला है. इस दुनिया की ही तो परेशानी है. दुनिया का हर आदमी चाहता है एथिस कि तुम बताओ कि वादा कब आने वाला है. आप हर एथिस से पूछना भी आप वो बोला वो कहेगा आपसे आप एथिस की वजह से बात करें कि तुम बिलीव करो अल्लाह पे और कयामत आने वाली हो. वो पहली बात पलट के बोलेगा कब आने वाला लेके आओ.
आप इतनी से पूछा, बोले यार तुम सच्चे तो जल्दी बताओ ये कब आने वाला, आज आज पूछना था किसी से, ये जो हरकत जो एथिस करते हैं ना, बताओ कब आने वाला, ये हरकत शुरू से है, ये हरकत इंसान की शुरू, ये अभी इतने स्मार्ट नहीं बने, शुरू से ही लोग इतने स्मार्ट है कि तुम सच्चो तो बताओ कब आने वाला है। तो क्या जवाब दिया, कह दो कि इसका इल्म सिर्फ खुदा के पास है, मेरा काम तो तुम्हें खोल के डरा देना है, मेरा काम तो तुम्हें खोल के डरा देना है। तफसीर में यह है कि दो तरह के गैब के इल्म होते हैं, दो तरह के गैब के इल्म होते हैं, इस तफसीर में बयान है। एक गैब का इल्म जो खुदा चाहता है अपने मुंतखब बंदों को दे देता है, जैसे रसूल अकरम हुए, आइमा ताहिरीन हुए, पैगंबरान हुए, उनको एक हिस्सा गैब का दे देता है, दूसरा हिस्सा अपने पास खुदा खुद रखता है। उसमें से कयामत का इल्म वो है जो रसूल को भी नहीं मालूम है, रसूलों को कयामत का इल्म नहीं मालूम, से खुदा को मालूम है। कयामत है इसी चीज की इंसान डरे कि जिसका इल्म था खुदा रसूल को नहीं मालूम, तो आगे की बात मालिक यौमिद्दीन को ही मालूम है। तो मालिक यौमिद्दीन से कयामत दिन के लिए इंसान को डरते रहना चाहिए, दुरूद पढ़ना। फलम्मा रऊहु ज़ुल्फतम सीयत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू वकील हाज़ल लदी कुंतु भी तद्दऊ। जब वो उसको नजदीक से देख लेंगे, जिसका वो जल्दी कर रहे थे, जब वो उसको नजदीक से देख लेंगे तो उनके चेहरे भी खड़ जाएंगे, कहा जाएगा ये वही चीज के लिए तुम दुआएं करा करते थे, लेके आओ जल्दी। ये इसका तर्जुमा है। ये सारी दुनिया जो जल्दी कह रही कि लाओ लाओ लेके आओ अजाब दिखाओ कयामत, अल्लाह सुभान ताला कह रहा है फलम्मा रऊहु ज़ुल्फतम सीयत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू वकील हाज़ा अल्लज़ी कुंतु बिही तद्दऊन, जिसके लिए तुम जल्दी मचाया करते थे, तद्दऊन दुआ से बना है, दुआ करते थे लेके आओ लेके आओ, कहा जब वो आ जाएगा तुम जब नजदीक से देख लोगे उस कयामत को तो तुम्हारे चेहरे बिगड़ जाएंगे, कहा जाएगा ये वही है जिसके लिए तुम कहा करते थे लेके आओ। तफसीर में बयान है, इसका एक डीप मीनिंग भी है, तफसीर में बयान है कि चेहरे कब बिगड़ते हैं, कहा कि चेहरे बिगड़ने में तफसीर में यह भी है कि जब हक अली हक फातिमा कुफार को मुनाफिक को बताया जाता है तो उनके चेहरे बिगड़ जाते हैं। ये तफसीर में बयान है आका ईमाने की, और वह आप करके देख लें आज भी आप, कि जो लोग हक अहले बैत को झुटलाते हैं अगर उसे बयान करो तो उनके चेहरे बिगड़ जाते हैं। ये तफसीर में बयान है, चेहरे यहां भी बिगड़ेंगे, वो चेहरे वहां भी बिगड़ेंगे जब देखेंगे अहले बैत का मुकाम दुरूद पढ़ रहे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह। और अरअयतुम कुल अरअयतुम इन अहनकली अल्लाह हो वो मम وَمَنْ مَعِيَّا أَوْرَحِيمَا فَمَنْ يُجِرِ الْكَافِرُونَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ بڑی گہری آیت ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكْنِ اللَّهُ مِنْ مَعِيْنَا وَرَحِيمَا فَمَنْ يُجِرِ الْكَافِرُونَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کہو تو بلا دیکھو تو اگر خدا مجھ پہ اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا رحم کرے تو اس کے بعد کافروں کو عذاب سے کون نجات دے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس آیت کا آپ لے جا دیکھیں کہ رسول کہہ دو کہ دیکھو بھلا دیکھو تو اگر خدا مجھ پہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا مجھ پہ رحم کرے تو اس کے بعد تم کفار کو عذاب سے بچانے والا کون ہوگا۔ بڑی وزندار آیت ہے۔ اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ جو کفار تھے وہ دعائیں کرتے تھے خدا سے کہ خدایا یہ جو آیا ہے معاذ اللہ جھوٹا، اس کو تو ہلاک کر دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان سے کہہ دو کیا اگر تم نے میری ہلاکت کی دعا مانگی اور مجھے میں ہلاک ہو گیا یا میرا ساتھی ہلاک ہو گئے या अल्लाह ने मुझ पर रहम करा तो मैं तो हो जाऊंगा, तुमको कौन बचाएगा अजाब से, तुमको मेरे बाद कौन अजाब से बचाएगा। तो तफसीर में बयान है कि एक तो यह है कि कुफार दुआ करते थे तो अल्लाह ने जवाब दिया, दूसरा यह बयान है कि दर हकीकत दीन खुदा के खौफ और रजामंदी के बीच की चीज है। खुदा ने फरमाया कि अगर रसूल पे या उनके साथियों पर अल्लाह ने हलाक करा या उन पर रहम करा, खुदा के जिम्मे है। लेकिन तफसीर में बयान है, तफसीर ईमान ही में, कि जो पहली जो कि तफसीर है वो ज्यादा सही है, जो मैंने बयान करी कि कुफार लोग दुआ करते थे उसका जवाब है। दूसरी जो मैंने बयान करी कि इसका मतलब ये है कि खौफ और रजा, खौफ और रजा, ये तफसीर इतनी ऑथेंटिक नहीं है रसूल के बारे में जितनी की पहली जो मैंने बयान करी, जिसका जवाब अल्लाह ने दिया कि रसूल के लिए लोग दुआ करते थे कि हलाक हो जाए। एक दुरूद पढ़ रहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन आले। हलाकत की दुआ रसूल की लोग तब भी करते थे और आज भी जो कि 12वें की मुनकर हैं यही कहते हैं ना कि क्यों कोई 1150 साल जिंदा रह सकता है, उनका तो इंतकाल हो गया होगा, यही कहते हैं ना कि कैसे जिंदा रह सकता है कोई शख्स जो 1100 साल पहले पैदा हुआ हो और वो इमाम की हलाकत की दुआएं ये भी किया करते हैं, कि वो तो हो गए खत्म, वो तो खुदा जाहिर करेगा जब इमाम आएंगे कि जो इनकी जो बोग्स हैं और कीने हैं अल्लाह ताला उसको दिखाएगा। और इसी बुज कीने की वजह से इमाम हुसैन को भी शहीद किया गया, लेकिन अल्लाह ने उसका जवाब अगली आयत में दिया, कुल हुर रहमान आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअमलुना मन हुवा फी दलालिन मुबीन। यह आयत इतनी खुदा की रहमानियत की दलील है रसूल अकरम के लिए, रसूल के साथियों के लिए और अइमा के पैरोकारों के लिए। कुल हुर रहमान अलैहि रहमानो आमन्ना भी, कह दो कि जो रहमान है उसी पर हम ईमान लाए, वो अलैहि ही तवक्कलना और हम उसी पर तवक्कल रखते हैं। पहली आयत में क्या कहा था कि रसूल तुम्हारे लिए दुआ करते तुम हलाक हो जाओ, अल्लाह ने जवाब दिया, तो पहली जो तफसीर थी वो ज्यादा सही बैठती है दूसरी आयत के जेर में। कुल हुर रहमान वो आमन्ना भी, हम कह दो कि वही रहमान है जिस पे हम ईमान लाए, वो अल्लाह ही तवक्कल ना और हमने उसी पे तवक्कल करा है। फसतावल होना मनुफी दलाल मुबीन, तुमको जल्द मालूम पड़ जाएगा कि गुमराही में कुली गुमराही में कौन है। दुरूद पढ़ दें मोहम्मद कुल रहे तुम इन अजबहू माकुम गोरू फमई यतिकुम बि मा इम मईन। यह आखिरी आयत है सूरह मुल्क की और उसके बाद सूरह मुल्क को ख़त्म करेंगे। कहो भला देखो तो अगर ये पानी जमीन के नीचे चले जाए तो कौन है खुदा का सिवा जो तुमको बहता हुआ पानी ला दे। इसकी तफसीर बड़ी खूबसूरत है और इस पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। इस आयत की आखिरी आयत है, किसी भी सूरे की पहली और आखिरी आयतें एक अजीब सी होती हैं, ये आखिरी आयत है। कहो के भला देखो तो जो पानी जो जमीन के नीचे चले जाए अंदर चले जाए तो कौन है कि तुम्हारे लिए बहता हुआ पानी ले आए। इसकी तफसीर बड़ी खूबसूरत है। तफसीर में एक है जमीन के दो हिस्से हैं, एक 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 वो हिस्सा है जो पेनिट्रेबल है पोरस, और एक हिस्सा नीचे अल्लाह ने सख्त रखा है चट्टानों का। यह अल्लाह की कारीगरी है, जिस तरह अल्लाह ने हमारे बदन की कारीगरी करी है, जिस तरह हमारी आंखों की और कानों की और दिल की कारीगरी करी है, अल्लाह ने उसी तरह से जमीन की कारीगरी करी है, पत्तों की कारीगरी करी है। हमारी आंखें कमजोर है, हमारी अकल कमजोर है, अल्लाह की कारीगरी हर तरह देखें। इस आयत में लाने कारीगरी दिखाई है। देखो जमीन के दो हिस्से हैं, एक पोरस हिस्सा एक टफ हिस्सा है। मैं जमीन के पोरस हिस्से में पानी लाता हूं और नीचे मैंने चट्टान रखी है ताकि पानी ठहरा रहे, ताकि तुम ये जो पानी जो बह रहा है अंदर जमीन के अंदर, इससे तुम कुआ भी खोद लेना, इसमें से नहरें भी निकाल लेना, इससे सिंचाई भी कर लेना। लेकिन अगर ये चट्टानें नहीं होती तो क्या होता, ये जमीन जमीन का पानी नीचे चले जाता। ये अल्लाह की कारीगरी के अंदर चट्टानें रखी ताकि पानी नीचे नहीं चले जाए। और अगर ये पूरी जमीन चट्टान होती तो फिर क्या होता, अगर पूरी जमीन चट्टान होती तो पानी ठहरता ही नहीं, ये जमीन का पानी बहकर सीधे समंदर में चले जाता। ये खुदा की कारीगरी है कि ऊपर पोरस रखा और नीचे चट्टान रखी अल्लाह ने। अल्लाह ये कह रहा है कुरान हकीम में कि देखो अगर ये पानी नीचे चले जाता यानी चट्टानें नहीं होती तो तुम्हारा पानी तुम खोद के कहां से लेके आते, ये बहता हुआ पानी तुम कहां से लेके आते। इसकी तफसीर में बड़ा गहरापन है। पांचवी इमाम ने फरमाया दुरूद पढ़ दे, पांचवी इमाम ने फरमाया कि कुरान के दो मायने, एक जाहिरी मायना एक बातिनी मायना। इसके अंदर बातिनी मायना यह है कि जो पानी जो बहता पानी का अल्लाह ने जिक्र करा है वो बारहवीं इमाम का जिक्र है दुरूद पढ़ दे। जब एक जमाना जब आएगा जब इमाम गैब में चला जाएगा तो लोग सोचेंगे इमाम कैसे आएंगे, तो कहा नहीं, जिस तरह पानी का तुम डरते हो अंदर चले जाएगा, इसी तरह बेहतर पानी जैसा आता है इमाम इसी तरह वापस आएंगे। दुरूद पढ़ दें, मोहम्मद जी हाँ, ये इमाम की तशबीह बहते पानी से। अगर बहता पानी हो तो इंसान मर जाए, इंसान मर जाए। आजकल इंसानी जो मर रही है, जो आज बहता पानी की मिसाल जिंदगी और हयात से, आज हर आदमी सोच रहा है कि कब आएगा बारवा, हर मजहब वाला सोच रहा है कि कब आएगा आखिरी वाला, कब आएगा, हर मजहब जिक्र है बारवा इमाम का, कब आएगा। आज हर तरफ आवाज आ रही है कोई ऐसा लीडर होना, ऐसा होना जो हमको दिखाए सीधा रास्ता। आज हर तरफ यह आवाज आ रही है, हर मजहब में यह आवाज आ रही है। इसीलिए हर मजहब ने सोचकर ये वो पानी है इमाम जमा, वो हयात इंसान के लिए जिसको अल्लाह, जिनको अल्लाह लेके आएगा। दुरूद पढ़ते हैं, अफमई यमशी मुकिबन अला वजी अहदा अम्मई यमशी सवीन अला सिरात मुस्तकीम। भला जो मुंह के बल चलता है वो हिदायत पे, या वो जो सीधा खड़ा होगा सीधे रास्ते पर चल रहा है। अगर मुंह के बल चलने वाला आपको देखना हो तो करबला में देख लें कि जो बहके हुए गुमराह लोग थे, मुंह के बल चलने की इससे बड़ी क्या क्या दलील हो सकती है कि एक 6 महीने के बच्चे का पानी बन करा। आज मुसलमान इतना गुमराह हो गया है, मुसलमान कहता है कि दो शहजादों में जंग थी, इमाम हुसैन को यजीद को दो शहजादे बता दिया। अरे मुसलमान ये तो सोचता कि जो मुंह के बल चलता है वो 6 महीने के बच्चे का पानी बन करता है, फिर कहता है दो शहजादों में जंग थी। आज इस्लाम को क्या हो गया है कि जाबिर बादशाहों को अपना लीडर मानते हैं। ये जो जाबिर बादशाह और सद्दाम जैसे को लीडर मानते तो उनके लिए ताजुब ना करना कि वो यजीद को भी अच्छा कहे। ये वही बेकेकों में जो जिसने के जाबिर बादशाह आज के जाबिर बादशाहों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, जो कि मुसलमानों का खुले आप कत्ल करते हैं, यही वो मुसलमान है जो कि कहता है यजीद भी अपनी तरफ का एक शहजादा था। जिस तरह उस जमाने में गुमराह थे आज भी मुसलमान गुमराह, अगर अहले बैत को छोड़ दोगे तो ऐसे ही गुमराह हो जाओगे। जो कि आज के जाबिर बादशाहों को भी अच्छा बोलते हैं, उनकी अकलें काम नहीं करती। उन्होंने इमाम हुसैन को न पहचाना, अगर इमाम हुसैन को पहचानना होता था पहले उनके फर्जंद को पहचान लेते, सैयद सज्जाद को, जिनकी दुआएं आज वेबसाइट पे मौजूद है, सैयद सज्जाद को पढ़ते तो कभी ऐसी जहालाना बात ना करते कि इमाम हुसैन और यजीद दो शहजादे थे। ये इंसान की अक्ल की और कल्ब की गुमराही है। अहलुल बैत को छोड़ोगे तो हक ना मिलेगा, सिर्फ मुंह के बल चलते रहोगे। इमाम हुसैन को देखिए आप, जो सीधे रास्ते पे चलता हुआ इस तरीके से चलता है, जिसने अमर बिन मारूफ करा ना है ना मुनकर करा, हक बात कही और जुल्म सहे, जिस तरीके से इमाम हुसैन ने हक बात कही और जुल्म सहे, कौन मुसलमान है जो कह सकता है कि इस तरह से सीधे रास्ते पर कौन चला है कि बेखौफ होकर उस सीधे रास्ते पर अपने उस काफिले को लेके आ गए। कहां से लेके, मक्के से लेके आए तो करबला तक आ गए। ये बेखौफ काफला जिस तरह से आया है, इमाम ने बताया कि जो सीधे रास्ते में चलता है वो सारे खौफ खतर से दूर रहता है, और इस तरीके से मौला को इन जालिमों ने घेरा और इस तरह परेशान करा कि उनके चिराग को बुझाना चाहते थे, उनके पानी को एहलुल बैत का जो चश्मा जो जारी करा था उसको दबाना चाहते थे, उसी की चाल में इन्होंने इन जालिमों ने इन मुंह के बल चलने वालों ने उनका पानी तक बंद कर दिया और पानी को इस तरह बंद करा। अरे जालिमों ने बनी हाशिम के बच्चों को प्यासा मार दिया इस तरीके से के सकीना कहने लगी हाय अलताश, अरे छोटे छोटे बच्चे, अरे सोचे आप, ए मुसलमानों आंख खोलो, अरे नन्हे बच्चे वो गर्मी और वो बच्चे, उन बच्चों ने क्या कसूर करा था। उसमें बच्चे कहने लगे हाय पानी आ जाए, अरे अबुल फजल पे सलाम हो, अरे अबुल फजल आप पे सलाम हो, अबुल फजल आप कहाँ चले, अरे कहाँ चले अबुल फजल, जवाब आएगा मैं सिर्फ प्यासे बच्चों के लिए जंग लड़ रहा हूँ, आका ने अपना खून दे दिया, आका क्यों खून दिया, कंधों से खून क्यों जारी हुआ, अरे बच्चों के पानी के लिए, आका हम आप पे क्रिया करते, कयामत के दिन आप हमारी शिफात करना मलिकुल मुल्क के सामने। अल्लाह हू अकबर।